गिनती अध्याय 31। अध्याय 31 में परमेश्वर मिद्यानियों के विनाश की आज्ञा देता है। मिद्यानियों से इसराइलियों का पलटा ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। गिनती 31 का दूसरा पद। ये मूसा के लिए अंतिम कार्य था। वे लोग अब उस देश में प्रवेश करने वाले थे जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और परमेश्वर मिद्यानियों से बदला लेने को कहता है, जिन्होंने इसराइल की संतान के साथ एक समस्या खड़ी कर दी थी, जो हमने पिछले अध्ययन में पढ़ा था। बालाक राजा ने लड़कियों को छावनी में भेजा, जो इसराइल की संतान के लिए व्यभिचार और मूर्ति पूजा का कारण सिद्ध हुई। अब परमेश्वर मिद्यानियों के उस कुकर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। मूसा ने हर गोत्र से हजार हजार पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बांधने को कहा, और इस प्रकार 12,000 हथियारबंद पुरुष युद्ध के लिए मूसा के साथ खड़े हुए। उन्हें मिद्यानियों के विरुद्ध जाने की आज्ञा दी गई। इस समय एलियाजर महायाजक था। उसका पुत्र पिनहास सेना के साथ लड़ने गया, और परमेश्वर ने मिद्यानियों को इन 12,000 लोगों के हाथ में कर दिया। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। गिनती 31 का 7 पद। इसमें नबी बिलाम भी था। आपको बिलाम की पहली भविष्यवाणी जो उसने इसराइल की संतान के लिए की थी याद होगा। उसने कहा, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। उसका निवेदन पूरा नहीं हुआ। वो धर्मियों की सी मृत्यु नहीं मरा। बिलाम लालच का दोषी था। उसने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया, और उसने स्वयं को परमेश्वर की आशीष से अलग कर लिया। इसलिए धर्मियों की सी मृत्यु पाने की अपेक्षा वो इसराइल और मिद्यानियों में युद्ध के समय मारा गया। और इसराइलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इसराइलियों की मंडली के पास आए। और मूसा सहस्रपति शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हरेक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो। गिनती 31:9-12 और 14-18 पद। तुम छोटी कुंवारी लड़कियों को जीवित रख सकते हो, परंतु शेष सभी को मार डालो, क्योंकि यही वो स्त्रियां हैं जिनके छल कपट के द्वारा इसराइल की संतान पर शाप आया। इस मोड़ पर बहुत से लोग हैं जिन्हें पुराने नियम पर कठिनाई आती है, और विशेषकर अगले अध्यायों पर जब हम यहोशू न्यायियों और राजाओं को पढ़ेंगे। मनुष्यों को मार डालने की आज्ञाओं पर कठिनाई है। ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर पूरे के पूरे देश को मार डालने की आज्ञा देता है, बच्चों को स्त्रियों को और सभी को? कहीं कहीं पशुओं और सब चीजों को नष्ट करना था। परमेश्वर कैसे इस सब के विनाश की आज्ञा दे सकता है? जब वे देश में आए तब उन्हें उन लोगों के साथ कोई वाचा या संधि नहीं करनी थी जो वहां रहते थे, परंतु उनको पूरी तरह नष्ट करना था या बाहर भगा देना था। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा क्यों दी? इन आज्ञाओं को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम इन लोगों की संस्कृति और विशेषकर उनकी धार्मिक रीतियों के बारे में जानें। दुनिया के इतिहास में शायद ये लोग सबसे अधिक पतित नैतिक जीवन जी रहे थे। हर तरह का पाप, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, इन लोगों में किया जाता था। विवाह की शपथ उन्होंने व्यर्थ किया। वे पशु के समान जीते थे और पशुओं के समान व्यवहार करना उनमें आम बात थी। उनके जीने का तरीका इतना गंदा और भ्रष्ट था कि उनका जीवित रहना असंभव था। वे नर की बलि पर विश्वास करते थे और अपने बच्चों को बलि चढ़ाते थे। जो व्यवहार ये लोग किया करते थे वो इतना गंदा और नीच था जो मिली जुली सभा में बताना अनिष्ट है, जो कनानियों के बीच में होता था। परमेश्वर ने इनको खत्म करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने इनको नष्ट करने की आज्ञा दी कि कहीं उसकी संतान भी उनके द्वारा भ्रष्ट न हो जाए। परमेश्वर उनको उस देश पर न्याय का साधन बनाकर ला रहा था इन लोगों के विरुद्ध, क्योंकि अपनी भयानक और घृणित आदतों के कारण वे मृत्यु के कगार पर थे। आप कहेंगे, परंतु छोटे बालकों का क्या? अबोध बच्चे? माता पिता के बिना उनका जीवन भयानक और दयनीय हो जाता यदि वे जीवित छोड़ दिए जाते। बच्चों को भी नष्ट कर दिया गया, ये तो परमेश्वर की दया ही थी। परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी ताकि वे उसके लोगों को भ्रष्ट करने ना पाए और उसके लोग भी उसी अनैतिकता के गड्ढे में न गिर पड़े जिसमें वे जी रहे थे। परमेश्वर ने इसराइल की संतान को न्याय का हथियार बनाया कि घृणित लोगों के दल को नष्ट करें। परमेश्वर ने नूह के समय जल प्रलय भेजा कि जो लोग भयानक रीति से जी रहे थे उनको नष्ट करें और सभी जल प्रलय से नष्ट हो जाएं, परंतु नूह और उसका परिवार सुरक्षित रहा। परमेश्वर ने जल प्रलय को न्याय का हथियार बनाया था। अब परमेश्वर इसराइल देश को प्रयोग कर रहा था इन लोगों के विरुद्ध जिनका नैतिक जीवन इतना गिर गया था। वे न्याय का हथियार बने। परमेश्वर का न्याय आवश्यक हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नाश कर डालने की आज्ञा दी। ये उनके भयानक पापों के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय था। उसे अपनी संतानों को बचाना था कि वे कनानियों के गलत आचरण से बचे रहे। मूसा क्रोधित हुआ क्योंकि उन्होंने उन स्त्रियों को जीवित रख छोड़ा। अतः उसने आज्ञा दी कि सभी बालक लड़कों को मार डाला जाए, पर केवल कुंवारी और छोटी लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाए जो इसराइलियों की गुलामी करें। फिर मूसा ने कहा, लूट की संपत्ति जो युद्ध से प्राप्त हुई है उसको दो भाग करो। लूट का एक भाग सारे इसराइलियों को और दूसरा भाग युद्ध में गए पुरुषों में बांट दे। इस प्रकार 12,000 लोग जो युद्ध में गए थे उन्हें लूट का आधा भाग मिला और प्रति 500 पर एक भाग एलियाजर महायाजक को जाना था। इसका अर्थ है एलियाजर रातों रात धनी हो गया क्योंकि उसमें करीब 337,500 भेड़े थी जो 675,000 का आधा भाग था जो लूट कर ली गई थी। इस तरह एक भाग उन 12,000 पुरुषों के भाग में गया जो युद्ध में गए थे, और प्रति 337,500 भेड़ों में से 500 पर में एक पर एलियाजर को मिली। इसलिए अचानक उसे विस्मयकारी लूट की भेड़ों का भाग मिला। यहां पशुओं की संख्या दी गई है और गधों की संख्या जो वे लूट कर लाए थे। इनमें 72,000 मावेशी थे और 61,000 गधे और 32,000 जवान और कुंवारी लड़कियां। इन सबको इसराइल की संतानों में बांट दिया गया। इसका आधा भाग जो इसराइल की संतान को दिया गया उसमें से एक प्रति 5 लेवियों को दिया जाना था। ये उनका भाग था, अर्थात युद्ध में जीत कर लाई गई लूट का 20वां हिस्सा। जब लोग युद्ध से लौटकर आए और उनकी गिनती की गई, तब उन्होंने एक भी पुरुष कम नहीं पाया। उन्होंने मिद्यानियों के सारे शहरों को नष्ट कर दिया, उसके सभी पुरुषों को बिना अपने पुरुष खोए मार डाला। प्राकृतिक तौर पर यह असंभव है, परंतु हम प्राकृतिक तर्क की बात नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ और हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। इसलिए हम आभारी हैं कि इधर एक भी हादसा नहीं हुआ और पूरे 12,000 सैनिक युद्ध से वापस लौट कर आए। वे प्रधान परमेश्वर के लिए सोने चांदी पीतल और कीमती पत्थरों की भेंट वहां लाए थे। वे एक भाग परमेश्वर के लिए लाए कि उसे धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, क्योंकि उसने उनकी सेना को युद्ध में बचाकर रखा। ये अध्याय 31 के अंत में दिया गया है। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वो सब का सब 16,750 शकेल का था। गिनती 31 अध्याय 51 और 52 पद।